उसके बाद अब जो अगली आयत है आयत नंबर 175 और इससे अगली आयत आप कह सकते हैं कि बदतरीन मिसाल है किस चीज की, हुब्बे जाह की और हुब्बे माल की, कब, इल्म के बाद जब कोई भटकता है। मैं तो जब ये आयतें पढ़ती हूँ मेरा यकीन करें अंदर से खून खुश्क हो जाता है अपने अंदर। मैं जिस बारे में ये आयत आती है जिस वक्त से रात से ही मैंने तैयारी शुरू की 9th पारे की, तो मुझे इस आयत से खौफ आता है। जैसे आपके कमरे में कोई खौफनाक चीज पड़ी हो तो आप उधर से गुजरते हुए खौफ महसूस करते हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह पारे के साथ ही जहन में आने लग जाता है कि अच्छा इस बारे में ये आयत आएगी वो आएगी। तो ये जो आयतें मैं पढ़ने लगी हूँ मैं इसको कोशिश करती हूँ इकट्ठा पढ़ूँ, लेकिन ये उस बंदे की कहानी है जिसको अल्लाह ने दीन दिया, जिसको इल्म दिया, लेकिन फिर वो किसी ऐसी मुश्किल का शिकार हुआ कि उस इल्म के फंदे को उसने उतार फेंका और इस दुनिया के पीछे लग गया। आइए पढ़ते हैं और साथ साथ दुआ करते जाइएगा अपने लिए भी और दूसरे दीन वालों के लिए भी कि अल्लाह हम में से किसी को शैतान के हाथों में इस तरह से तर निवाला न बनाना। वतलू अलैहि नवल्लज़ी आतैनाहु आयातिना फनसलख मिन्हा, और ए नबी इनके सामने इस शख्स का हाल बयान करो जिसको हमने अपनी आयात का इल्म अता किया था मगर वो इनकी पाबंदी से निकल भागा। हाईलाइट कीजिए, ये पाबंदियां नहीं अच्छी लगती। इससे निकल भागने वाला शैतान के हाथों में आ जाता है। लिख ले, किसी मेले में जब तक बच्चा बाप का हाथ थामा रखेगा वो उचक्कों से और बच्चों को अगवा करने वालों से बचा रहेगा। जिस बच्चे ने अपना हाथ छुड़ा लिया कि नहीं मैं आजाद हूं मुझे पता है क्या ठीक है क्या गलत है, थोड़ी देर बाद वो बाप से दूर हो गया। इसी तरह याद रखिए इन आयतों की पाबंदी, इन पर अमल करना, इसके ऊपर जम जाना हमें शैतान से बचाता है। लेकिन ज्यों ही वो पाबंदी से निकला आखिरकार शैतान उसके पीछे पड़ गया, यहां तक कि वो भटकने वालों में शामिल होकर रहा। इधर पहली बात तो अभी से साथ लिखे, इसमें अमल की बहुत सी बातें हैं, तो एक बात तो लिख लीजिए कि अगर अल्लाह ने आपको इल्मी तौर पर कोई इत्तेहाद दिया हुआ है ना तो उसको कभी ना छोड़ें। अगर आपको अल्लाह ताला ने दीन के नाम पर किसी गिरोह के साथ किसी सिस्टम के साथ जोड़ा है तो इसको नेमत समझें। क्यों? अकेले बंदे को शैतान खा जाता है। आपने कहा रात को तन्हा जंगल में सफर ना करो क्योंकि शयातीन और जिन्नात चिमट जाते हैं। आपने फरमाया कि वो भेड़ जो किसी रेवड़ से अलग हो जाती है उसको भेड़िया खा जाता है। अकेला बंदा अपने दीन का दिफा नहीं करता। यहां से असल में हमें इज्तमाई तौर पर दीन के लिए कोशिशें करने की दावत भी मिलती है और इशारे भी मिलते हैं क्योंकि इंसान साथ चलता नहीं है। मैं आपको मिसाल देती हूँ कि हम इधर रेस्टोरेंट से निकलते हैं और हम कहते हैं कि बैठे बैठे थक गए हैं बहुत देर से, तो ऐसा करते हैं कि हम वो मोड़ तक पैदल चलते हैं। 7 लोग हम निकले, इमेजिनेशन में लाइए, उम्र फर्क, ताकत फर्क, एनर्जी फर्क, कुछ तेज चलना चाहेंगे, कुछ आहिस्ता चलेंगे, कुछ के घुटनों में दर्द है और कुछ का भागने को दिल करेगा, कुछ का जॉगिंग करने को दिल करेगा। अब इन 7 का हाथों में हाथ डाल के यहां से वहां जाना क्यों कि बीच में 2-3 सड़कें आती हैं, रोड क्रॉस करनी है, ट्रैफिक लाइट आ सकती है। चलो भाई साथ ही रहते हैं तो अब कुछ को सब्र करना पड़ेगा ना। सबसे ज्यादा सब्र आपको होता है किसका होगा? जो भागना चाहता है उसको वो बूढ़े ठेड़ों की उंगलियां पकड़ के जाना पड़ेगा, अम्मा जल्दी चलो, अम्मा तेज चलो, अम्मा तेज चलो। ये है दीन के काम की सबसे बड़ी मुश्किल। हर साथी की स्पीड फर्क होती है, हर साथी को अल्लाह ने सलाहियतें डिफरेंट दी होती हैं और इसमें कोई बुरा नहीं। अब जो बेचारा आहिस्ता चलता है उसका क्या कसूर है? ठीक है कोई मोटा है तो उसका यही कसूर होगा, वो मोटा क्यों है? लेकिन जो बूढ़ा है वो जवान कैसे हो? तो दीन के सफर में साथ लेकर चलना यही कामयाबी है। ये बताया गया कि फन सलह मिनहा, उसने कहा नहीं तुम सब सुस्त हो मैं ज्यादा काम कर सकता हूं। और दूसरी बात ये होती है पाबंदियां नहीं बर्दाश्त होती, नहीं नहीं अकेले जाऊंगी मैं इस मोड़ तक नहीं, मैं तो उससे अगले तक भी जरा मैं ज्यादा वॉक कर लूंगी। बाहर शैतान ये कहता है कि अगर मैं अकेला दीन का काम करूंगा ना ज्यादा करूंगा। लिख ले, मैं आपको अपने तजुर्बे के साथ ये बात बता रही हूं, अल्हम्दुलिल्लाह सारी जिंदगी इसी काम में गुजर गई है जब से होश संभाला है। जिस बंदे ने ये सोचा कि मैं अकेला काम करूंगा वो एक लिमिटेड करता है, अल्लाह जाया नहीं करेगा, अल्लाह ने उनकी कोशिशों को किया हुआ है हर शहर हर मुल्क में हर जगह। लेकिन बड़े काम करने के लिए इज्तमाईयत की जरूरत होती है। टीम लिखिए जरा इंग्लिश में, TEAM। इंग्लिश में कहते हैं देयर इज नो आई, आई इन टीम, आई के मैं, आई एम अना। ये जो अना का बुत है ना सबसे पहले इसको जिबा करना पड़ता है फिर टीम बनती है। पता है आप तेज चल सकते हैं पर आपको ऐसा चलना पड़ेगा। और इसी तरह जरा ऐसा चलने वाले को कहा जाता है, अम्मा जी जरा तुसी भी तो कदम चुको, आप उस बेचारी जवान पोती को क्यों तंग कर रही हैं, आप थोड़ा तेज चले, भाग सकती हैं, इतवार बाजार में तो बहुत भाग भाग के जा रही थी, अब क्या हो गया आपको। तो फिर करें क्या, सबको बैलेंस लेके चले, तो आहिस्ता चलने वाले तेज चले, तेज चलने वाले जरा आहिस्ता, लेकिन सबसे बड़ी कीमत जो इज्तमाइयत की है वो अना छोड़नी पड़ती है। ये छोड़ देंगे टीम बनी रहेगी, सहाबा की टीम सिर्फ इसीलिए बनी रही और मरते दम तक वो अपने आप को मुसलमान करते थे क्योंकि उन्होंने अपनी अना छोड़ी। हजरत उमर के अंदर क्या खूबियां भरी हुई थी, ऐसे गयूर थे, गरजते थे, शोर मच जाता था, लेकिन इसके साथ उसमें अबू बकर की आवाज इतनी दबी भी, इतनी नरम थी, उसमें बिलाल हबशी भी थे, उसमें सलमान फारसी भी थे, वो एक खूबसूरत फूलों के गुलदस्ते की तरह चले रहे। तो मेरी सलाहियत से ज्यादा टैलेंट मुझे कोई खुद मिल रहा है, मैं किसी के साथ अपना टैलेंट कम करूं, ये है वो सोच जिससे का फन सलाह मिनगा, उससे वो निकल गया। और शैतान इसी रास्ते से बहुत सारे लोगों को हटाता है और इसी से झगड़े भी होते हैं। दीन के कामों में लोगों को गुंजाइश देना सीखे, हर एक से राबता करें, भाई आपकी क्या मजबूरी, और याद रखे कभी ना के फला मुनाफिक है, भाई अब एक बीमार है वो मुनाफिक कैसे हो गया, एक बंदा कमजोर है वो फासिक कैसे हो गया, बदगुमानी और ये सारी चीजें पीछे करें तो फिर टीम बनती है। और आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि इख्तलाफात ऐसा कैंसर है जो दीनदारों को खा जाता है, और बाज लोग ऐसे मौकों पे फिर टूटने लगते हैं, तो अल्लाह ताला कहते हैं जूं ही वो पाबंदी से निकला आखिरकार शैतान उसके पीछे पड़ गया, यहां तक कि वो भटकने वालों में शामिल होकर आ। अपने लिए दुआ कीजिए अल्लाह हमें ऐसे लोगों में ना करना, अगर हम चाहते तो उसे इन आयतों के जरिए से बुलंदी अदा करते। ये दूसरा मसला है, लोगों को दीन ऐसे लगता है कि जैसे हमारी तरक्की और बुलंदी के रास्ते की रुकावट है, लो अब मैं तो फुल टाइम इसी में लग गई हूं, पढ़ूंगी कैसे, लो मेरा तो सारा हल्का अहबाब ही छूट गया, मेरी तो जॉब छूट रही। अब वो ऐसे ख्याल दिल में शैतान डालता है कि गोया के ये जो आयतों का और दीन का काम है ना, यही सारी चीजों की रुकावट है, तो क्या करता है वो उसको छोड़ता है, जिसको छोड़कर गया अल्लाह कहता है वो इधर से ही मिल जाना था। मैं अक्सर यहां मिसाल देती हूँ लोगों को इमाम काबा की, देखिए सुदैस पुराने इमाम है, आज और भी बहुत सारे हमारे इमाम, क्या इमाम सुदैस कामयाब नहीं है, कुरान की आयतों को पढ़ते हैं, तिलावत है, कभी आपने कभी जाकर उनकी कोई दुनिया की डिग्री पूछी, उनकी पे पूछी, उनका घर देखा, मुझे इत्तेफाक हुआ उनके घर देखने का, उनकी बहन उनके करीब से, मैं कहती हूँ कि रब्बन आती ना फिर दुनिया हसना और आखिर हसना की मुंह बोलती तस्वीरें उनकी जिंदगियां, वो जा नहीं सकते हरम में जब तक आगे पीछे 8-10 लोगों की फौज ना हो, जान की भी उनकी हिफाजत करते हैं, माल की करते हैं, जहां वो पांव रखते हैं वहां वो कारपेट रखते हैं, हर नमाज से पहले उस जगह को धोया जाता है, साफ किया जाता है, वहां खुशबू लगाई जाती है, फिर उनका मसल्ला बिछता है। अल्लाह कहते हैं तुम जिस चीज को लेने के लिए दुनिया की तरफ गए थे, वलौशेन अलरफा ना हो भी, हाँ हम तो सारी इज्जत उसी दीन से ही दे देते हैं। ये मैं अक्सर बच्चियों को कहती हूँ जो 1 साल छोड़ के आती हैं कुरान कोर्सेज के लिए, हम जब कोर्स ऑफर करते हैं तो सम कोर्सेज 1 साल के होते हैं कि जिसमें 1 साल में आपको कुरान सिखा दें, अब बाज कोर्सेज जो मोस्टली चलते हैं वो 1.5 साल के हैं, बच्ची ने 1 साल छोड़ा, अब क्या नहीं जी सॉरी अगले साल फिर स्कूल में जा रहे हैं, कोई पूरा कुरान का कोर्स करता है नहीं, अब वो जो रुकी हुई तालीम है वो पढ़ना है, वो पढ़ने गए वापिस ही नहीं आए। अल्लाह कहते हैं इस दीन में से इज्जत ढूंढो, इधर से रिस्क भी मिलेगा, जॉबें भी मिल जाएंगी, माल भी मिल जाएगा, लेकिन शैतान क्या उसका अल्लाह बुरा करे कि जो इंसान के दिल में डालता है कि ये दीन तुम्हारी तरक्कियों में रास्तों में रुकावट है, अल्लाह ताला फरमाते हैं मगर वो तो जमीन की तरफ झुक गया, मादा प्रस्त मटीरियलिस्टिक हो गया और अपनी ख्वाहिश नफ्स के पीछे ही पड़ा रहा। अल्लाह हमारी ख्वाहिश नफ्स को दबा दे। अल्लाह ने अपनी मार्फत का एक पायलट फ्लेम दिल में रखा हुआ था लेकिन उसने उसको बुझा दिया, लिहाजा उसकी हालत कुत्ते की सी हो गई कि तुम इस पर हमला करो तब भी जुबान लटकाए रहे और इसे छोड़ दो तब भी जुबान लटकाए रहे। यही मिसाल है इन लोगों की जो हमारी आयात को झुठलाते हैं, तुम ये हिकायात इनको सुनाते रहो शायद कि ये कुछ गौर व फिक्र करें। बड़ी ही बुरी मिसाल है ऐसे लोगों की जिन्होंने हमारी आयात को झुठलाया और वो अपने आप पर ही जुल्म करते हैं, जिसे अल्लाह हिदायत बख्शे बस वो ही राह रास पाता है और जिसको अल्लाह अपनी रहनुमाई से महरूम कर दे वही नाकाम व नामुराद होकर रहता है। और ये हकीकत है कि बहुत से जिन और इंसान ऐसे हैं जिनको हमने जहन्नम ही के लिए पैदा किया, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह हमें जहन्नमियों के लिए ना बनाना कि हम जहन्नम का ईंधन बने। इनके पास दिल और दिमाग हैं मगर वो इनसे सोचते नहीं है, इनके पास आंखें हैं मगर वो इनसे देखते नहीं है, इनके पास कान हैं मगर वो इससे सुनते नहीं हैं। वो जानवरों की तरह हैं, एनिमल इंस्टिंक्ट्स, बतन और फर्ज के तकाजे, वही जो पारे के शुरू में का, बतन और फर्ज, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। आज यही ख्वाहिशात देखिए उभारी जा रही हैं, खाओ पियो मौज करो, रोमांस लव सेक्स, यही चंद नामों को आप देखिए पूरी दुनिया में कल्चर बना दिया गया। फरमाए वो जानवरों की तरह बल्कि इससे भी ज्यादा गए गुजरे, ये हैं वो लोग जो गफलत में खोए हुए हैं। इस आखिरी हिस्से पे तो दो आंसू बहा ले, वलाइक हुमुल गाफिलून। तो यहां पे ये मिसाल पूरी हुई है, क्या पता चला कि दीन का जाहरी लुबादा पहनने वाले ज्यादा दिन उस लुबादे में नहीं रहते। देखिए जो चीज साथ चलती है ना जिस्म के, वो हमेशा रहती है। ऊपर से कोई मोटी चीज पहन लें, थोड़ी देर बाद उतार देंगे। जैकेट पहन के घर में तो नहीं फिरते, वो बाहर सर्दी से बचने के लिए आपने पहनी थी। मोटे शूज, स्नो शूज क्यों पहने के बाहर बर्फ में गए, घर में आए उतार दी। बाज लोग दीन का एक जाहरी लुबादा सिर्फ पहनते हैं, अल्लाह ताला हम सबको उससे महफूज रखे। वाह वाह सुभान अल्लाह, और लोग उनके आगे झूमते नाचते कूदते। वल्लाह ही कल इतना गंदा सीन मुझे किसी ने दिखाया कि मैंने औज़ुबिल्लाह पढ़ी, कि किस तरह एक वीडियो थी और एक पीर साहब खड़े हैं और उनके साथ और भी लोग हैं और लोग हल्का हल्का रक्स कर रहे हैं और एक जवान खातून आती है पीर साहब के सामने खड़ी है। अल्लाह ताला मुझे माफ करे, मैं आपको जो बयान भी कर रही हूँ अगर आपकी आंखें भी गंदी हो जाए उसको सोच के। और वो फिर उनके कंधों पे हाथ रखती है, फिर वो उसको सीने से लगाते हैं, हक देते हैं, फिर उसके सर पे प्यार करते रहते हैं। दूसरे लोग उनके गिर्द धमाल डाल रहे हैं, थोड़ी देर वो औरत पीछे जाती है, पीर साहब खुद घुमा रहे हैं और बस इतना ही मैं देख सकी, उसे आगे मैंने बंद कर दिया। और ये दीन के नाम पे हो रहा है, ये मोहब्बत है। इसको किसी फिल्म में डाल दें तो इसको लोग गंदा सीन कहेंगे, ये वल्गर सीन था। इसको दीन के नाम पे और लिखा हुआ पीर साहब की आशिक, ये करते हैं लोग। जाहरी दीनदारी ऐसा ही गंदा लुबादा, अंदर नफ्स की हवा। कभी जाकर देखिए ऐसी गंदी जगहों पे क्या कुछ सेक्स और क्या कुछ गंदगियां फैली हुई हैं। तो दीन वो मांगिए जो सिबगत अल्लाह की तरह आपके जिस्म का हिस्सा बन जाए, जो लिबास तकवा बनकर आपकी जिंदगी, खाना पीना सोना जागना बन जाए। कहना ना पड़े कि मैं दीनदार, ओ हो रमजान है, ओ हो काबा में आए हुए हैं, ओ हो मस्जिद में है, ओ हो ये नहीं, आप और दीन एक चीज हो जाए। क्यों आर्टिफिशियली लोगों को बड़े दीनदार बन के दिखाते हैं जो आप निभा नहीं सकते। खाइए पहनिए ओढ़िए, फर्ज के वक्त में फर्ज अदा कीजिए, नफिल के वक्त में नफिल अदा कीजिए, हकूक वाले बात के वक्त में हकूक अदा कीजिए, मामलात में अच्छे रहिए। ये है हमारा दीन। हमारे दीन में कोई ऐसी वीरी मुरीदी ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें शख्सियत परस्ती के लोग नाम पे लोग, ये पीर साहब कभी सोए नहीं, ये कभी जागे नहीं। और बड़ी बड़ी तस्वीरें दीवारों पे भी लगा दें और दिल की दीवारों पे भी अपने बुजुर्गों की तस्वीरें लगा दें, मुझे कभी वो दीन नहीं समझ आया जिसमें रहनुमाओं की तस्वीरें लगाई जाती हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए जाहरी दीनदारी से बचाए। और आप देखिए कि ये दो चीजें अगर दब जाए ना, बतन और फर्ज के, तो बहुत सारा दीन महफूज हो जाता है। आज हया को पामाल करके, बेहयाई को पामाल करके पूरी दुनिया को एक ऐसा कल्चर दिया जा रहा है कि जिसके अंदर ये सारी चीजें आ रही हैं। अल्लाह ताला मुझे आपको बचा कर रखे इन सारी चीजों से। अब इन आयतों की कड़वाहट, मैं अपने दिल से बोल रही हूँ, इन आयतों की कड़वाहट को दूर करने के लिए वलिल्लाहिल हुस्ना, अल्लाह अपने अच्छे अच्छे नामों का तذکرہ फरमाते हैं। अल्लाह ताला अच्छे नामों का मुस्तहिक है, इसको अच्छे ही नामों से पुकारो। और इन लोगों को छोड़ दो जिसके नाम रखने में रास्ते से मुनहरिफ हो जाते हैं, जो कुछ वो करते हैं इसका बदला वो पाकर रहेंगे। हमारी मखलूक में एक गिरोह ऐसा भी है जो ठीक ठीक हिदायत और हक के मुताबिक इंसाफ करता है, अल्लाह हमें ऐसा ही गिरोह बना दे। रहे वो लोग जिन्होंने हमारी आयत को झुटला दिया, तो हम इनको बतदरीज यानी ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता ऐसे तरीके से तबाही की तरफ ले जाएंगे कि इन्हें खबर तक ना होगी। मैं इनको ढील दे रहा हूं मगर मेरी चाल का कोई तोड़ नहीं। क्या पता चला कि अल्लाह सुबहान तआला किस तरीके से लोगों पर नजर रखते हैं। आप देखिए कि जितना ज्यादा बाशऊर बनकर दीन सीखेंगे ना, उतना आप दीन को एंजॉय करेंगे। और सिर्फ आंखें बंद करके चंद लोगों की बड़ाई के नाम पर दीन सीखेंगे, आप ये कुरान नहीं सीखेंगे। कम से कम मैंने देखा जो लोग शख्सियात में उलझ जाते हैं ना, वो इस कुरान से डरते हैं। वो कहते हैं पता नहीं क्या होगा, हम सही समझेंगे भी नहीं, ये तो उलमा की काम है, ये तो बड़े दीनदार होकर सीखना होता है, इससे पहले 6 उलूम पकड़े। कई लोगों को ये आपके हाथों में कुरान पकड़ा हुआ अच्छा तो नहीं लगेगा, वो कहेंगे ये बेइज्जती हो रही है, ये बेअदबी हो रही है कुरान की। अल्लाह सुबहान तआला कहते हैं कि मेरे नाम से डरने वाले जब मेरे सामने होंगे तो उस वक्त उनको कौन बचाएगा। अल्लाह की बात के बाद अब नबी सल्लम की बात फरमाया, और क्या इन लोगों ने कभी सोचा नहीं, क्या इनके रफीक पर जुनून का कोई असर नहीं, यानी नबी सल्लम पर जो एक इल्ज़ाम था कि आप जुनूनी हैं या नौज बिला मजनू हो गए, दीवाने हो गए, तो फरमाया ये जुनूनी नहीं है, वो तो एक खबरदार कर देने वाला है जो बुरा अंजाम सामने आने से पहले साफ साफ आगाह कर रहा है। आज भी लोग आपको जुनूनी कहेंगे, लिख लें अभी से, क्योंकि क्या जुनून सवार हो गया, कब ये भूत उतरना है, कब खत्म होना है ये कुरान का सिलसिला। तो जब आपको जन्नत नजर आने लगती है और आप उसको पाने के लिए दिन ब दिन बड़ी से बड़ी नई से नई कोशिशें करने लगते हैं, तो लोगों को अक्सर आप जुनूनी ही लगते हैं। क्या इन लोगों ने आसमान और जमीन के इंतजाम पर कभी गौर नहीं किया, और किसी चीज को भी जो अल्लाह ने पैदा की आंखें खोल कर नहीं देखा, और क्या ये भी उन्होंने नहीं सोचा कि शायद इनकी मोहलत जिंदगी पूरी होने का वक्त करीब आ लगा हो। जरा से देखिए मेरी एक्सपायरी डेट क्या है, पता है आपको? मुझे एक टमाटरों का डब्बा खरीदते हैं ना, उस पर भी एक्सपायरेशन डेट लिखी होती है। आपकी मेरी मौत की डेट, एक्सपायरेशन की डेट अल्लाह ने छुपा के रखी। क्यों रखी? ताकि तुम हर वक्त मौत के लिए तैयार हो। तो किसको पता कल किसने देखना है? हम कहते हैं मौज करो, मस्ती करो, आज जवानी है। अल्लाह कहता है किसको पता क्या मौत करीब लगी हो और ऐसे वक्त में जिंदगी पूरी हो। फिर आखिर पैगंबर की इस तंबीह के बाद और कौन सी बात ऐसी हो सकती है जिस पर ये ईमान लाएं? बात ये है कि जिसको अल्लाह रहनुमाई से महरूम कर दे, इसके लिए फिर कोई रहनुमा नहीं। दिल की गहराई से दुआ करें अल्लाह हमें महरूम ना करना इस रहनुमाई से, और अल्लाह इन्हें इनकी सरकशी ही में भटकता हुआ छोड़ देता है। ए अल्लाह हमें सरकशियों से निकाल ले। ये लोग तुमसे पूछते हैं आखिर वो क्यामत की घड़ी कब नाजिल होगी? कहो इसका इल्म मेरे रब ही के पास है, इसे अपने वक्त पर वही जाहिर करेगा। आसमानों और जमीन में वो बड़ा सख्त वक्त होगा, वो तुम पर अचानक आ जाएगा। कभी देखे चलते चलते गाड़ी अगली गाड़ी से टकरा जाए, कितना झटका पड़ता है। ये स्पिन होते हुए आसमान, जमीन, सूरज, सितारे एकदम रोके जाएंगे, ये आपस में टकरा जाएंगे, कितना सख्त धमाका होगा वो, और फिर होगा भी अचानक। और आपको पता है कि अचानक चोट ज्यादा पड़ती है। ये लोग उसके मुतल्लिक तुमसे इस तरह पूछते हैं गोया कि तुम इसकी खोज में लगे हुए हो, यानी आपको क्या पता कि क्यामत कब आनी है। कहो इसका इल्म तो सिर्फ अल्लाह को है, मगर अक्सर लोग इस हकीकत से ना वाकिफ हैं। ए नबी इनसे कहो मैं अपनी जात के लिए किसी नफे और नुकसान का इख्तियार नहीं रखता। जरा सा इस पे गौर कर ले अभी, अल्लाह के नबी कह रहे हैं मैं अपनी जात को भी नफा और नुकसान नहीं दे सकता, अल्लाह ही जो कुछ चाहता है वो होता है, और अगर मुझे गैब का इल्म होता तो मैं बहुत से फायदे अपने लिए हासिल कर लेता। क्या फरमा रहे हैं आप? अगर मुझे गैब का इल्म होता, हम क्या कहते हैं आपको था है? तो मुझे कोई नुकसान ना पहुंचता। आपने उससे सल्लम की सीरत पढ़िए, कई मुकाम ऐसे गुजरे कि आपको जब तक बात नहीं पता थी नहीं पता थी। हजरत आयशा पे एक महीना तक तोहमत लगी रही, इतनी ज्यादा टेंशन थी माशरे में, लेकिन अल्लाह के नबी को नहीं पता थी तो आप परेशान थे। हार ढूंढते रहे हजरत आयशा सिद्दीका का, ढूंढते रहे ढूंढते रहे, नमाज जा रही है तो तयम्मुम के आयते उतर गई, नमाज पढ़ पढ़ा के जब उठे कि चलो नहीं मिलता तो चलते हैं, उसी ऊंटनी के नीचे से हार मिल गया। जहर का मिला हुआ खाना किसी ने खिला दिया, आपको नहीं पता चला। तो याद रखिए अल्लाह के नबी को तब गैब पता चलता था और उतना पता चलता था जितना अल्लाह और जब अल्लाह बताता था। मैं तो महज एक खबरदार करने वाला और खुशखबरी सुनाने वाला हूं उन लोगों को जो मेरी बात माने। अल्लाह तो हमें बात मानने वाला बना दे। वो अल्लाह ही है जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी की जिन से इसका जोड़ा बनाया ताकि इसके पास सुकून हासिल करे। आप बीवियों का तذکرہ, बीवी कौन है? सुकून देने वाली चीज। अल्लाह ने बीवी के पास सुकून रखा था, लोगों ने गर्लफ्रेंड से मांगना चाहा। उस माशरे में कभी सुकून नहीं होगा जहां बीवियां सुकून का जरिया ना बनी। अब देखिए शौहर बीवी की अब दोबारा बात आ रही है, सूरह बकरा में भी बड़ी खूबसूरत बात थी, हुन्ना लिबासुल लकुम वअन्तुम लिबासुल लहुन। तो क्या पता चला कि किसी सोसाइटी में सुकून और इत्मीनान चाहिए तो शौहर बीवी के रिश्ते को पाक करना पड़ेगा। बीवी जमीन की तरह होती है, मर्द बीज डालता है, जो मर्द अपनी जमीन को ही बंजर कर दे बताइए वहां अच्छी नस्लें कहाँ होंगी। अब एक प्रोसेस की तरफ इशारा है कि लोग कैसे औलादों को अपने बुजुर्गों के नाम पे डालते हैं जबकि उनको अल्लाह ही ने दिया। फरमाया जब मर्द ने औरत को ढांक लिया तो इसे एक खफीफ सा हमल रह गया जिसे लिए लिए वो फिचलती फिरती रही। फिर जब वो बोझल हो गई तो दोनों ने मिलकर अल्लाह से अपने रब से दुआ की कि अगर तू हमको अच्छा सा बच्चा दे तो हम तेरे शुक्र गुजार हों। आप देखिए प्रेगनेंसी में दोनों ही की नजरें अल्लाह पे लगी होती हैं, लेकिन आगे क्या होता है। मगर जब अल्लाह ने इनको एक सही सालम बच्चा दे दिया तो वो इसकी बख्शिश और इनायत में दूसरों को इसका शरीक ठहराने लगे। अक्सर लोग कहते हैं ये पीरा दित्ता है। पीरा दित्ता नाम सुना, क्या ये इस आयत के खिलाफ है कि ठीक है, और फलां की इनायत और उसकी मर्जी का। याद रखिए औलाद जितनी मर्जी भी इंसान कोशिश और ख्वाहिश रख ले अल्लाह के हुक्म से मिलती है, कभी अपने बच्चों को दूसरों के नाम पे नहीं लगाना। इसी तरह से इसको दूसरों को कैसे शरीक करते हैं, उस बच्चे की गलत तरबियत करके। आपके लिए एक प्लानर बनाया गया जिसमें आप अपने बच्चों का स्केड्यूल बना सकती हैं, रोज का, नमाज का, सपारे का, कुरान का। एंड पे दिखाते हैं तो ईमेल में जब जाए आप उसका प्रिंट आउट करें, अपने हर बच्चे के लिए एक अलग प्रिंट रखें और उनको एक्टिविटी के तौर पे करवाएंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि खुशी खुशी से वो उसको फिलअप करने के लिए भी इस काम को करेंगे। और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें बच्चों की अच्छी तरबियत की तौफीक दे। अल्लाह बहुत बुलंदो बरतर है इन मुशरिकाना बातों से जो ये लोग करते हैं। कैसे नादान हैं ये लोग कि इनको खुदा का शरीक ठहराते हैं जो किसी चीज को पैदा नहीं करते बल्कि खुद पैदा किए जाते हैं, जो ना इनकी मदद कर सकते हैं और ना ही अपनी मदद पर कादिर हैं। अगर तुम इन्हें सीधी राह पर आने की दावत दो तो वो तुम्हारे पीछे ना आए। तुम ख्वाह इन्हें पुकारो या खामोश रहो, दोनों सूरतों में तुम्हारे लिए यकसा ही रहे। तुम लोग खुदा को छोड़कर जिन्हें पुकारते हो तो महज बंदे हैं तुम जैसे बंदे। इनसे दुआएं मांग देखो, ये तुम्हारी दुआओं का जवाब दें अगर इनके बारे में तुम्हारे ख्यालात सही हैं। कभी कब्र के सिरहाने बैठे किसी शख्स से पूछे, कभी इस कब्र के अंदर से जवाब भी आया? नहीं आएगा। क्या ये पांव रखते हैं कि इनसे चलें? अक्सर बुत जो होते हैं वो खड़े होते हैं, बुत चल तो नहीं सकते। क्या ये हाथ रखते हैं कि इनसे पकड़ें? क्या ये आंखें रखते हैं कि उनसे देखें? क्या ये कान रखते हैं कि उनसे सुने? ऐ नबी इनसे कहो बुला लो अपने ठहराए हुए शरीकों को, फिर तुम सब मिलकर मेरे खिलाफ तदबीरें करो और मुझे हर किस मोहलत ना दो। मेरा हामी और नासिर वो खुदा है जिसने ये किताब नाजिल की। यानी नबी सल्लम की सबसे बड़ी दुश्मनी उनके दिल में इस बात पे थी कि आप हमारे इन बुतों को और हमारे इन बुजुर्गों को बुरा क्यों कहते हैं। फरमाए तुम मेरे खिलाफ तदबीरें करो और मुझे हरगिज़ मोहलत ना दो। मेरा हामी और नासिर अल्लाह है जिसने ये किताब नाजिल की। वो नेक आदमियों की हिमायत करता है बखिलाफ इसके तुम जिन्हें खुदा को छोड़कर पुकारते हो। वो ना तो खुद तुम्हारी मदद कर सकते हैं ना खुद अपनी मदद ही के काबिल हैं, बल्कि अगर तुम इन्हें सीधी राह पर आने के लिए कहो तो वो तो तुम्हारी बात सुन भी नहीं सकते। बज़ाहर तुमको ऐसा नजर आता है वो तुम्हारी तरफ देख रहे हैं मगर फिल वाके वो कुछ नहीं देखते। आप देखिए कि शिर्क की तो कोई मिसाल ही नहीं है दुनिया में, कोई बात नहीं। लेकिन माँ बाप को गलत काम करते देखकर लोग वही काम करने लग जाते हैं और फिर उसके खिलाफ कोई बात उनको समझ नहीं आती। करो क्या। अब सूरत का एंड देखिए कितना प्यारा अदब और मैनर सिखाया गया हम सबको नबी सल्लम के नाते से। खुजिल अफवा मुरबिल उर्फिवार दनिल जाहिलीन। तीन काम करने मैंने भी और आपने भी इंशाल्लाह, शिर्क के कले कमे के लिए और दुनिया से बुराइयों के खात्मे के लिए। क्या? ए नबी नरमी और दरगुजर का तरीका इख्तियार करो, मारूफ की तलकीन किए जाओ और जाहिलों से ना उलझो। अगर कभी शैतान तुम्हें उकसाए तो अल्लाह की पनाह मांगो, वो सब कुछ सुनने और जानने वाला है। हकीकत में जो लोग मुत्तकी हैं इनका हाल तो ये होता है कि कभी शैतान के असर से कोई बुरा ख्याल अगर इन्हें छू भी जाता है, क्या पता चला कि मुत्तकियों को भी बुराई का ख्याल आता है, आ सकता है पर ठहरता नहीं है। क्या होता है? फौरन चुकन्ने हो जाते हैं, फिर इन्हें साफ नजर आने लगता है। दुआ करें वो तकवा मिल जाए जो गुनाह करने से पहले ही सुझा दे कि ये शैतानी तरीका है। उनको नजर आने लगता है कि इनके लिए सही तरीकाकार क्या है। रहे इनके यानी शैतान के भाईपन तो वो इन्हें इनकी कजरवी में खींचे लिए जाते हैं और इन्हें भटकाने में कोई कसर नहीं रखते। ऐ नबी जब तुम इन लोगों के सामने कोई निशानी यानी मौजजा पेश नहीं करते तो ये कहते हैं तुमने अपने लिए कोई निशानी क्यों ना इंतखाब कर ली। इनसे कहो मैं तो सिर्फ उस वही की पैरवी करता हूं जो मेरे रब ने मेरी तरफ भेजी है। ये बसीरत की रोशनियां हैं तुम्हारे रब की तरफ से और हिदायत और रहमत है इन लोगों के लिए जो इसे कबूल करें। हाईलाइट कीजिएगा, अल्लाह ताला कहते हैं ये सिर्फ उनको फ़ायदा देती है जो इसको कबूल करते हैं। दुआ करें कि अल्लाह हमें इस किताब को कबूल करने वाला बना दे। कुरान हमेशा तब फ़ायदा देता है जब आप अपनी खुशी से इसको सीखें। स्कूल में बचपन में माँ ज़बरदस्ती छोड़ आती है, अल्लाह ताला कहते हैं कुरान ज़बरदस्ती नहीं आएगा। प्यार से मोहब्बत से मोटिवेशन दे दें, चिखा तो दें। आप देखिए कभी कोई चीज़ आप खाते हैं और कोई नहीं खाता तो आप कहते हैं मुंह को तो लगाओ, चख तो लो, और जब चखते हैं तो फिर वो आदी भी हो जाते हैं। बस लोगों को ये किताब चखाएं, पीछे ना पड़ें, ज़बरदस्ती ना करें। आप चखाएं, कहने की बजाय करके दिखाएं, ले आए साथ बिठा दें, कहीं कुरान पढ़ा हुआ उनको भेज दें, आप देखें एक दफ़ा उनको अगर इसका मज़ा आ गया वो इसको कबूल करेंगे। और दुआ करते हैं कि हम भी इसको कबूल करें रखें। करो क्या, वैज़ा कुरी अल कुरान फस्तमिउ लहू वअन्सितु लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान तुम्हारे सामने पढ़ा जाए तो इसे तवज्जो से सुनो और खामोश रहो, शायद कि तुम पर भी रहमत हो जाए। क्या पता चला, कुरान खुले, फोन बंद, टैक्स बंद, इधर उधर की सारी चीज़ें बंद। अच्छा बात, लोग जाहिर बंद कर लेते हैं लेकिन जहन के दरीचे खुले रहते हैं, तो सोचो को भी बंद करके पूरे दिल से इसको सुनिए, फिर देखिए ये आपके मेरे दिल की दुनिया को कैसे बदलता है। ए नबी अपने रब को सुबह शाम याद किया करो, दिल ही दिल में जारी और खौफ के साथ और जुबान से भी हल्की आवाज के साथ। तुम इन लोगों में से ना हो जाओ जो गफलत में पड़े हुए हैं, ऐ अल्लाह हमें गफलतों से निकाल दें। जो फरिश्ते तुम्हारे रब के हजूर तकर्रुब का मुकाम रखते हैं वो कभी अपनी बड़ाई के घमंड में आकर इसकी इबादत से मुंह नहीं मोड़ते और इसकी तस्बीह करते हैं और इसके आगे झुके रहते हैं। ये है पहली आयत सजदा। हुक्म क्या है, फर्ज नहीं है, याद रखिए गुना नहीं है, लेकिन सजदा करने का अजर बहुत होता है। आप बाद में भी कर सकती हैं, जब यहाँ से उठें हल्का सा झुक जाएं इस सोच के साथ कि हमने अल्लाह के हुक्म पर अमल कर दिया, लेकिन शैतान को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है कि मुझे सजदे का हुक्म था, मैंने इनकार किया, मैं भटक गया, आदम को सजदे का हुक्म हुआ तो इसने इसको मान लिया। अल्लाह ताला हमें अंदर बाहर से झुकने वाला बना दे। तो ये एक खूबसूरत सूरत हमने पूरी की और इसके बाद अब एक उससे भी खूबसूरत सूरत शुरू करने वाले हैं।